नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
जल्दी दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह, सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करूं मैं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, शारों का हाँ तू सोसन भी वादियों का, तू ही है नरगिस का शारों का, हाँ तू सोसन भी वादियों का, संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र, कैसे कामिल और शान से भरा, कैसे कामिल और शान से भरा, हम करूं मैं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। दुख के सागर में, घबराहट की लहरों से डर, डूबूं दुख के सागर में, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मधुर और पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से भजन संहिता की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने 13, 14 और 15 अध्याय का अध्ययन किया और इसमें हमने देखा दाऊद की गंभीर दुर्दशा और इसके साथ हमने देखा महाक्लेश के समय की बातों को और तब हमने देखा कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों से उम्मीद करता है कि लोग उसके निकटता में रहें। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए। हमारी प्रार्थना है पिताजी, आज अपने जीवित वचन के द्वारा हम सब श्रोता भाई बहनों से बोले और बातचीत करें, हम सबको आशीष प्रदान करें, विशेष करके उनको जो दुखी हैं, निराश हैं, चिंतित और परेशान हैं, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए आप उनकी सहायता करें। इस समय को आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आज का अध्ययन का हमारा विषय है मसीह का पुनरुत्थान। भजन संहिता 16 से 24 एक और खंड तैयार करते हैं जो संयोजित हैं। हमारे गीत की पुस्तक में एक ही प्रकार के गीत एक साथ रखे जाते हैं, जैसे स्तुति के गीत, पश्चाताप के गीत आदि हमारे गीत की पुस्तक में अलग अलग भागों में रखे जाते हैं। इसी प्रकार भजनों को भी भजन संहिता में व्यवस्थित किया गया है। इन 9 भजनों का शीर्षक विश्वास योग्य शेष इसराइलों के साथ मसीह की भविष्यवाणी है। भजन 16 हमें पुनरुत्थान का गीत सुनाता है। यह तीसरा मसीह संबंधित भजन है। यह मसीह के जीवन का जो पद 8, मसीह की मृत्यु पद 9, मसीह का पुनरुत्थान पद 10 और मसीह के स्वर्गरोहण पद 11 का वर्णन करता है। मसीह का पुनरुत्थान इस भजन से नए नियम में 3 स्थानों पर संदर्भित किया गया है। इस भजन को दाऊद का मिकताम कहा गया है। मिकताम का मूल अनिश्चित है। मार्टिन लूथर ने इसका अर्थ निर्धारण इस प्रकार से किया है, एक सुनहरा रत्न। मेरे विचार में यह वास्तविक अर्थ के अत्यधिक निकट है। भजन संहिता 56 से 60 में भी मिकताम भजन कहलाते हैं। इस भजन का मसीही अर्थ नए नियम में पवित्र आत्मा की गवाही द्वारा पुष्ट किया गया है, इसे हम आगे चल करके देखेंगे। तो आइए हम इस भजन को दाऊद का सुनहरा रत्न कहें, क्योंकि वह अपने वंश से आने की वाट जो रहा है, जिसके बारे में वह कहने योग्य है कि यह मेरा परिपूर्ण उद्धार है। आइए पढ़ें भजन संहिता 16 उसका एक पद, लिखा है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा है कि तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। जी हाँ, यह पद प्रभु यीशु मसीह की वाणी की प्रतिध्वनि है, जब उसने कहा था योहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 30 पद में, मैं अपनी इच्छा नहीं अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। प्रभु यीशु ने मानव रूप धारण करके स्वेच्छा से इस पृथ्वी पर अधीनता का जीवन अपनाया था। हम सब जो अकिंचन और दुष्ट मानव हैं, घमंड से भर जाते हैं और स्वयं को ऊंचा उठाना चाहते हैं। आज अनेक उच्च पदासीन मनुष्य हैं, राजनेता, वैज्ञानिक, शिक्षक, नेता, पदाधिकारी आदि, ये लगभग परमेश्वर का स्थान ले चुके हैं। परंतु सच तो यह है कि हम इस पृथ्वी पर आलू से बढ़कर नहीं हैं, वह भी छोटे छोटे आलू से। हमारा वास्तविक मूल्य अधिक नहीं है, कहने का मतलब यही है, हम स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाए गए हैं। इसे हम इब्रानियों के पत्री 2 अध्याय उसके 6 और 7 पद को पढ़ करके जान सकते हैं। मुझे इसी स्थान पर रहना है, परंतु प्रभु यीशु के लिए यह आवश्यक नहीं था। वह तो स्वेच्छा से मनुष्य बना था। मैं मानव जाति में जन्म लेकर प्रसन्न तो हूँ, परंतु मुझे यह भी बोध होना आवश्यक है कि मनुष्य वास्तव में क्या है। परमेश्वर मेरे लिए और मेरे साथ, वरन उसके सब विश्वासियों के साथ जो करेगा, वह मुझे आनंद प्रदान करता है। मेरे मित्रों, भजनकार कहता है कि हे ईश्वर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। प्रभु यीशु का कैसा अद्भुत चित्रण यहाँ पर दर्शाया गया है। यह दाऊद का भी चित्रण था और निश्चय ही आपका और मेरा भी है। भजन संहिता 16:2 में लिखा हुआ है, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। आप कार में सवार हुए होंगे या पर्वतों में भ्रमण किए होंगे या समुद्री तट पर विचरण किए होंगे और आंखें स्वर्ग की ओर उठाकर आपने कहा होगा, हे प्रभु, तू मेरा सृजनहार है, मेरा उद्धार करता, मेरा प्रभु है। क्या आपने कभी उससे यह कहा है? मेरे पास एक छोटा बेटा है जो मेरी गोद में बैठ करके मुझसे कहता है कि आप मेरे पापा हैं। जी हाँ, यह एक अद्भुत अनुभव है। हमारे एक स्वर्गीय पिता है जिसने हमें अपने स्वरूप में रचा और मेरे विचार में वह चाहता है कि हम उसके पास आकर उससे कहें कि तू मेरा प्रभु है, तू मेरा पिता है। क्या आपने इन दिनों में उससे यह कहा है? मत्ती रचित सुसमाचार 7:22-23 पद में इस बात को हम पाते हैं, जहाँ पर घमंडियों की नाई न बने कहा गया है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुल करके कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मेरे मित्रों, ये वे लोग हैं जो उसे प्रभु तो कहते हैं परंतु उसे जानते नहीं थे। मैं उसे प्रभु कहूँ तो मैं उसे सार्थक निभाऊं भी। भजन संहिता 16:3 पद में लिखा है, जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा, मैं उनके लोहू वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। देखिए, वह अपने भक्तों का प्रभु है। यह सौभाग्य सबका नहीं है, जैसा कि अगला पद हमें दर्शाएगा। भजन संहिता 16:4 पद में लिखा है, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे बाँट को तू स्थिर रखता है। जी हाँ, जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। देवता शब्द अनुवादकों द्वारा जोड़ा गया है। इस पद का अर्थ है कि मनुष्य किसी अन्य वस्तु को देवता समझकर उसके पीछे भागता है। दाऊद के युग में अन्य जातियों के भी देवता थे जिनके नाम दागोन और बाल थे। मुझे उन लोगों पर आश्चर्य होता है जो कहते हैं कि उनका कोई विश्वास नहीं है। मुझे किसी ने कहा, मैं विश्वास वचन में आस्था नहीं रखता हूँ। मैंने कहा, जी हाँ, आप आस्था रखते हैं और आपका विश्वास वचन है कि आप किसी विश्वास वचन में आस्था नहीं रखते हैं। आप इस विषय में कुछ नहीं कर सकते। आपका विश्वास वचन स्वतः ही विकसित हो जाता है। एक आराधनालय सड़क के किनारे था और उस पर लिखा था, विश्वास वचन नहीं परंतु केवल मसीह है। यह उनका विश्वास वचन था जो बहुत अच्छा था, जबकि वे उस कथन के अनुरूप सत्य की घोषणा नहीं कर रहे थे। भजन संहिता 16:5-6 पद में आगे हम पढ़ते हैं, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। यह कैसी अद्भुत बात है, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। प्रभु इस संसार में आया और मनुष्य रूप धारण करके पाप और दुख के संसार में रहा। वह यहाँ एक परदेशी था। वह यहोवा में आनंद करता था। उसके जीवन में शांति और आनंद था। उसने कहा, मेरा भाग और मेरे कटोरे। जी हाँ, भाग और कटोरे में क्या अंतर है? मेरा भाग वह है जो मेरा है, चाहे मैं इसका आनंद लूं या ना लूं, वह मेरा ही है। कटोरा वह है जिसे मैं परिश्रम द्वारा अपना बनाता हूँ, उदाहरण के लिए, मेरे बेटे की प्लेट में जो खाना परोसा जाता है वह उसका भाग है, परंतु वह उसे टेबल पर गिराता भी है तब भी वह उसका है। अतः जो वह वास्तव में खाता है वह उसका कटोरा है। संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से सब आशीषें पाते हैं, परंतु उनका आनंद नहीं ले पाते हैं। उनका कटोरा छलकता नहीं है, उनके कटोरे में अधिक नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन का आनंद लें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 10 पद में यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अध्याय 15 पद 11 में यीशु कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुझ में या तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हम में से कुछ कभी कभी आनंद लेते हैं, सदा सर्वदा नहीं। हमें सदैव जीवन और आनंद से भरा पूरा रहना है। भजन संहिता 16 के 7 पद में लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। रात में जब आपको नींद नहीं आती तब आप क्या सोचते हैं? भजनकार परमेश्वर पर चित लगाता है। हम अब उन पदों को देखेंगे जिनका संदर्भ नए नियम में दिया गया है। भजन संहिता 16 उसके 8 से 10 पद में हम पढ़ते हैं, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। मेरे मित्रों, यह प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का भजन है। पेंतिकोस्त के दिन पत्रस के संदेश की भी मुख्य विषय वस्तु यही भजन था। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 25 से 31 पद में हम पढ़ते हैं, दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं गिर न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। वह भविष्यद्वक्ता था, वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। पत्रस ने स्पष्ट कहा कि भजन संहिता 16 8 से 10 पद मसीह के पुनरुत्थान के विषय में कहता है, परंतु मुक्त विचारक या धर्म विज्ञान के लोग जैसे पेरोन कहते हैं कि भजन 16 कहीं भी मसीह यीशु के पुनरुत्थान से संबंधित नहीं है। मुक्त विचारवादियों की इस बात को सुनकर मुझे पत्रस की घोषणा पर ध्यान देना पड़ता है। पेंतिकोस्त के दिन पत्रस का संदेश सुनकर हजारों मनुष्य ने मसीह को ग्रहण किया और उद्धार प्राप्त किया, जिसके कारण रोमी राज्य में क्रांति आई थी। इस बात को ध्यान में रखकर मैं मुक्त विचारवादियों से पूछना चाहता हूँ, आपकी सेवा के द्वारा कितने मनुष्य मसीह को ग्रहण कर रहे हैं? यही सच्ची परख है। पत्रस ने कहा कि भजन संहिता 16 प्रभु यीशु के पुनरुत्थान से संबंधित है और मैं उसकी बात से सहमत हूँ। मेरे प्रियो, पेंतिकोस्त के दिन पत्रस ने यह भी कहा, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। अतः अब इसराइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। मेरे मित्रों, इस भजन को पौलुस ने भी प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 35 से 37 पद में संदर्भित किया था, जब उसने कहा, इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा है, तू अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वह सड़ने नहीं पाया। देखिए, पौलुस के अनुसार भी यह भजन मसीह यीशु के पुनरुत्थान की भविष्यवाणी है। इस भजन में अद्भुत बातें हैं। पद 8 में मसीह यीशु का जीवन, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। मेरे मित्रों, यही वह मार्ग था जिस पर वह इस पार्थिव जीवन में चला, यही वह मार्ग है जिस पर मैं चलना चाहता हूँ। पद 9 में मसीह यीशु की मृत्यु का उल्लेख है, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु स्वीकार की क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर उसे फिर जीवित करेगा। अब पद 10 यीशु के पुनरुत्थान की भविष्यवाणी करता है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। और पद 11 में प्रभु यीशु के स्वर्गरोहण की भविष्यवाणी है। आइए हम भजन संहिता 16 उसके 11 पद को पढ़ें। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। यह एक अद्भुत पुनरुत्थान का भजन है और नए नियम में इसका संदर्भ है। इस मसीह संबंधित महान भजन में निश्चय ही प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की भविष्यवाणी है। मेरे मित्रों, यहाँ पर भजन संहिता 16 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और भजन संहिता 17 से देखेंगे। भजन 17 का शीर्षक है दाऊद की प्रार्थना। अब प्रश्न यह उठता है कि यह कब लिखा गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह भजन उसके जंगल के अनुभव की अभिव्यक्ति है, संभवतः वह समय जब शाऊल के सैनिकों ने लगभग उसे पकड़ ही लिया था। इस भजन में दाऊद का परमेश्वर पर भरोसा प्रकट है, परंतु अंतिम विश्लेषण में यह भजन मूल रूप से प्रभु यीशु की चर्चा करता है। यह भजन हमारे लिए भी एक प्रार्थना है जब हम परीक्षाओं, तनाव और संकट में से गुजरते हैं या घिरे हों। इस भजन के अध्ययन में हमें स्मरण रखना है कि हम मसीह से संबंधित भविष्यवाणियों की एक नई श्रृंखला में हैं। अंततः यह मसीह यीशु की पुस्तक है। तो आइए हम भजन संहिता 17 उसके 1 पद को पढ़ें। लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। यह दाऊद की प्रार्थना है जब शाऊल उसका पीछा कर रहा था, उसका जीवन संकट से घिरा हुआ था और यह प्रार्थना उसके मन के उद्गार थे। वह अपने मन में उठने वाले विचारों को व्यक्त कर रहा था। इसमें किसी प्रकार का कोई भी दिखावा नहीं है, वह दोगली बातें नहीं कर रहा है। दूसरे शब्दों में उसकी बातों में अनिष्ठा नहीं है। तब हम भजन संहिता 17 उसके 2 पद में पढ़ते हैं, मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहें। वह तैयार है कि परमेश्वर उसे तौल कर देख ले, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहें। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु हाँ, मैं परमेश्वर से न्याय करने की याचना नहीं कर सकता, मैं तो केवल उसकी दया की भीख मांग सकता हूँ। हमें परमेश्वर से जो चाहिए वह केवल उसकी दया है। भजन संहिता 17 उसके 3 में आगे लिखा है, तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मेरी देखभाल की, तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। यह ध्यान देने योग्य एक रोचक बात है कि जब परमेश्वर दाऊद को परख रहा था तब उसे कुछ मिला, जब उसने मुझे परखा तब भी उसे कुछ मिला। मेरे विचार में उसने आपको परख कर देखा तो अवश्य ही कुछ पाया। ये शब्द सर्वप्रथम मसीह से प्रासंगिक हैं। पद 1 में व्यक्त भजनकार की प्रार्थना जो झूठे होठों की नहीं है, हमारे सिद्ध प्रभु यीशु की सिद्ध प्रार्थना है। प्रभु यीशु के विषय में पत्रस कहता है, पहला पत्रस 2 अध्याय के 22 पद में, ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। और तब पहला पत्रस 2 उसके 23 में कहता है, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज की इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। आइए आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस जीवित वचन के लिए, जिसके माध्यम से आपने हमें फिर से एक बार इस बात का स्मरण दिलाया है कि आप हमसे प्रेम करते हैं। और भजनकार के द्वारा से प्रभु फिर से एक बार आपने उन बातों को हमें सिखाया है कि हम आपकी ओर निहार सकते हैं, जिस प्रकार से पत्रस मसीह यीशु के लिए कहता है कि उसने अपने आप को सौंप दिया। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आप हम में से हर एक भाई बहनों की सहायता करें ताकि हम अपने जीवन में आपको निहार सकें और इस बात का संतुष्टि हमारे जीवन के अंदर में आ सके कि आप हमारे रक्षक हैं। जिस प्रकार से आपने दाऊद को एक बड़े भयानक अनुभव से गुजरने में सहायता प्रदान किया और उसे आपने आशीष में परिणित कर दिया, आज हमारे जीवन में भी ऐसा ही होने दीजिए ताकि हम उन आशीषों को मुड़ करके देख सकें जिसे आपने हम सबके जीवन में जोड़ा है। इस समय हम इसे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। आज के वचन के लिए पुनः आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम। पाऊँ तेरे दीदार में ईमान, पाऊँ तेरे दीदार में ईमान। हम्द करूँ मैं तेरी ऐ प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊँ शुक्रगुजारी से मैं, गाऊँ शुक्रगुजारी से मैं।